आज हमारी सीरीज मेरी जन्नत की मजलिसों की फिफ्थ एपिसोड को हम सुनते हैं। मैं और आशी हंसी मजाक में मशगूल थे कि मुझे अपनी एक क्लास फेलो का ख्याल आया। वो भी कॉलेज में हमारे साथ ही हुआ करती थी और हमेशा हमें ये कहती रहती थी कि तुम तो पागल हो, किन चक्करों में पड़ गई हो, ये तो ऐसे ही मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं, ताकि तुम डर जाओ और अच्छे काम करने लगो, और जन्नत की बातें हैं ताकि तुम जरा खुश हो जाओ, इसके सिवा कुछ नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। पता नहीं अब वो कहाँ होगी। ये कहने की देर थी कि हमारे सामने एक मंजर आ गया जिसमें हमारी वो क्लास फेलो हमें नजर आने लगी। वो आग के बीचों बीच खड़ी थी। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया, हाय ये क्या। आशी कहने लगी, ये जहन्नुम के अंदर है, उसको चारों तरफ से आग ने घेरा हुआ था और वो सख्त चिल्ला रही थी। उसकी चीखें, जहन्नमियों का शोर और जहन्नुम का अपना शोर, एक हंगामा था जो वहां बरपा था। हम तो दम बखोद रह गए उसको देख के, और मुसलसल हमारे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकल रही थी कि अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। हमने उससे कहा, तुम तो हमें भी ले डूबने वाली थी, ये तो अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें बचाया, और हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम्हारे रास्ते पर नहीं चले, वरना आज हम भी तुम्हारे साथ होते। उसका अजाब देखा नहीं जा रहा था, दिल दहला देने वाला था। देखने में जो ऐसा था, इतना सख्त कि पत्थर दिल आदमी भी कांप जाए, तो जो उसके अंदर सजा भुगत रहा होगा उसका क्या हाल होगा। हां मगर एक बात यकीनी है कि किसी ने भी उस पर जुल्म नहीं किया, ये उसने अपनी जान पर खुद जुल्म किया। ना नमाज की परवाह थी, ना रोजे की, जब जन्नत जहन्नुम का यकीन ही नहीं था तो और इबादत कहां से आती। इस पर ये कि वो दूसरों को भी बहकाने वाली थी, उनको भी अपने रंग ढंग में लाने के लिए बड़ी तकरीरें झाड़ती थी, किसी को अमल करते देख लेती तो मजाक करती, उसकी हंसी उड़ाती। कितना फर्क है दोनों दुनियाओं में, वाकई जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। जन्नत वाले नेमतों में, दाइमी खुशियों में, सुख चैन में, और जहन्नम वाले मुसलसल अजाब में, तकलीफ में, दर्द में, मायूसी में, कितना फर्क है, कोई मुकाबला ही नहीं। हाँ सिर्फ एक चीज है जो दोनों में मुश्तरक है, और वो ये कि उनको भी हमेशा रहना है जहां वो हैं, और हमें भी हमेशा रहना है जहां हम हैं। हम दोनों ने अपनी क्लास फेलो से कहा, क्या हमने तो जो हमसे तो जो अल्लाह ताला ने वादा किया था उसको हमने सच पाया, क्या तुमसे जो अल्लाह ने वादा किया था उसको भी तुमने सच पाया। क्योंकि वो दुनिया में बहुत कहती थी कि ये सिर्फ बातें हैं, ये कुछ नहीं है, तो अब हमारा उससे पूछना बनता था। वो बोली हाँ। इतने में एक फरिश्ता आया और उसके ऊपर लानते करने लगा। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और उसको चेहरा बता रहा था कि वो कितनी अजियत में है। वो कहने लगी, सुनो तुम लोग थोड़ा पानी मुझ पे बहा दो, मैं प्यास से मर रही हूं, मैं जल रही हूं, या इन नेमतों में से ही कुछ मेरी तरफ फेंक दो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है। हमने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हराम है उनके लिए जिन्होंने दीन को खेल तमाशा बनाया हुआ था। वो जोर से चीखी और उसकी चीखें दिल दहला देने वाली थी। हमने अपना मुंह मोड़ लिया और वो मंजर हमारे सामने से गायब हो गया। कुछ देर मैं और आशी तो जैसे सकते में आ गए थे, हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस हमारी जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह था। वाकई अल्लाह ना हमें बचाता तो हम बच नहीं सकते थे, क्योंकि ईमान के ऐसे लुटेरे स्कूलों, कॉलेजों, इंटरनेट पे बैठे हुए थे जो लोगों का ईमान लूट लेते थे और उनको पता भी नहीं चलता था। और तो और हमारे तो अपने जानने वालों में भी बाज ऐसे अफराद थे कि जिस मजलिस में बैठते थे मुसलसल आखरत का मजाक, दीन का मजाक ना खुद अमल करते थे ना किसी को करने देते थे। जिसको जरा भी दीन की तरफ मायल देखते उसके पीछे पड़ जाते थे, कभी एक बात सुनाते कभी दूसरी। खुदा खौफी नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी, सिर्फ वो नाम के मुसलमान थे, काम बिल्कुल उलट थे। और सबसे बड़ी बात यह कि डरते नहीं थे अपनी अपने आइडियाज का प्रचार करने में। जहां बैठते थे वहां अपनी बातें प्रमोट करते थे और लोगों से कहते थे, छोड़ो यार तुम भी किनकी बातों में आ गए, ये मौलवियों वाली बातें तुम्हें सूट नहीं करती, ये मौलवी तो ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं। फिर एक लंबी लिस्ट उनकी बदकिरदारियों की गिनवाते थे और दूसरों को और खुद को मुतमईन करते थे कि दीन पर चलने की कतन कोई जरूरत नहीं, तुम बेदीन ही अच्छे हो। दीन के शायर का मजाक उड़ाते थे। आज दिल से शुक्र निकल रहा है कि अल्लाह ताला ने हमें गुमराह होने से बचा लिया, वरना हमारा भी यही अंजाम होना था। मैंने आशी से कहा, हमें कितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वो बोली, बेशक दुनिया की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए, मगर रब का करम था कि उसने बचा लिया, और मौत के वक्त तो शैतान पीछे पड़ गया था मेरे, किसी तरह भी मैं शक में पड़ जाऊं आखरत के बारे में, अल्लाह ताला के हकीकी रब होने के बारे में। और रह रह के दिल में एक ही बात आई जा रही थी कि पता नहीं कोई खुदा है भी या नहीं, पता नहीं आज जिसका मैं सारी जिंदगी यकीन करती रही पता नहीं वो सब सही भी था या नहीं। ऐसी ऐसी बातें दिल में आ रही थी कि मैं खुद परेशान हो गई थी और दुआएं कर रही थी कि अल्लाह मेरा खात्मा खैर पे करना। तो अल्लाह ताला ने मुझे साबित कदम रखा, वरना शायद मैं आखिरी दमों पर शैतान के वसवास का शिकार हो जाती। जैसे जैसे मौत का वक्त करीब आ रहा था उसके हमले और जोर पकड़ रहे थे। वाकई हमें जो कुरान की क्लासों में बताया जाता था कि मौत के वक्त शैतान के हमले तेज हो जाते वो मैंने देखा। शुक्र है कि दीन की इतनी समझ थी और अल्लाह ताला ने उस वक्त बचा लिया, वरना उसने तो अपना बहुत जोर लगाया कि मैं किसी तरह पलट जाऊं। मगर मैं मुसलसल कलमा पढ़ती जा रही थी और अल्लाह ताला से मदद मांग रही थी, और ये भी अल्लाह ताला का करम था कि जिसने कलमा मेरी जुबान पे जारी कर दिया। फिर जब जन्नत के फरिश्ते मुझे लेने आ गए तब मेरी परेशानी दूर हुई। मेरा अल्लाह मुझे उस वक्त ना थामता तो मैं तो फिसल जाती। मैंने कहा, तुम सच कहती हो, उसने हमें दुनिया में हिदायत का रास्ता दिखाया, हमें अपने कलाम से जोड़ दिया, हमें उसने अपने दीन की समझ दी और इसके लिए चुना और हमें यहां तक पहुंचाया, वरना मौत का मरहला किस कदर खौफनाक था, उस वक्त तो कोई अच्छा भला भी पिसल सकता था। मैं तो जिंदगी में बड़ी दुआएं किया करती थी कि ए अल्लाह खात्मा बिल खैर कर देना, तो रब ने मेरी सुन ली। और सुनो, उसके बाद कब्र कौन सी आसान थी, वो भी तो एक बहुत ही खौफनाक मरहला था। नमाज रोजा सदका कुरान ना होते तो हम तो मुकाबला नहीं कर सकते थे उन अजाबों का जो कब्र के थे। मुनकर नकीर के सवालों के जवाब देना हमारी हिम्मत तो ना थी। आशी, दुनिया में शायद इन नेकियों की हमें इतनी कदर नहीं होती थी, मगर जब वक्त पड़ा तो पता चला कि ये एक एक छोटी छोटी नेकी भी कितनी कीमती थी। तब पता चला जब कब्र में गए, जब हशर में खड़े हुए, कि तस्बीह पर की जाने वाली एक सुभान अल्लाह भी कितनी कीमती थी। सारी दुनिया की दौलत भी हम दे देते तो मरने के बाद एक सुभान अल्लाह का सवाब हम नहीं पा सकते थे। सारी दुनिया की दौलत दे के एक वुजू का अजर हम समेट नहीं सकते थे। और ये तो बड़ी आसान वाली नेकियां थी जो मिनटों में हम कर लिया करते थे, मगर हम इनकी अहमियत उस वक्त इतनी नहीं समझते थे। बड़ी नेकियां तो दूर की बात, छोटी छोटी आसान आसान नेकियां भी मौत के बाद करना नामुमकिन हो गई थी और आज तक हम नहीं कर सकते। आज भी हम जन्नत में भी आ गए, तब भी हम अपनी एक नेकी में भी इजाफा तो नहीं कर सकते, अपने एक दर्जे को भी नहीं बढ़ा सकते। हम यहां जब से आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह के तराने पढ़ रहे हैं, तो भी देख लो हमारी नेकी नहीं बढ़ रही। दुनिया वाकई अमल की जगह है, अमल सिर्फ वहीं करेंगे तो फायदा होगा, उसके बाद जितना भी अमल करना चाहे उसका फायदा नहीं। कितने आंसू बहाए, कितने हम रोए हशर के मैदान में, मगर किसी एक आंसू का भी हमें फायदा हासिल नहीं हुआ, हमारे गुनाह नहीं मिटे। और दुनिया में तो एक आंसू बहाने पे गुनाहों के अंबार मिट जाते थे, धुल जाते थे। दुनिया में एक बार भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते तो हमारा सारा मीजान नेकियों से भर जाता। मगर कहां इतनी बारीकी से सोचते थे। आशी कहने लगी, हां गुड़िया सच कहती हो, हाय रे दुनिया तेरा कयाम कितना मुख्तसर था मगर तेरा धोखा कितना ज्यादा था। गुड़िया मैं आज सोचती हूं कोई एक लम्हा भी दुनिया में मैंने अल्लाह की याद के बगैर क्यों गुजारा, मुझे तो और कोई हसरत नहीं सिवाय इसके। हाँ आशी जिसको देखो वो यही कहता फिर रहा है कि काश हम दुनिया में एक लम्हा भी उसकी याद के बगैर ना गुजारते। हम दोनों अपने तख्तों पर लेट गई और खलाओं में देखने लगी। ऊपर का मंजर इतना हसीन था, दरख्तों की शाखें झुकी हुई थी और तरह तरह के फल उनसे लटक रहे थे। बास फल ऐसे थे जो जाने पहचाने थे, दुनिया में भी हुआ करते थे, कहीं खजूर थी कहीं केला था कहीं अंगूर थे कहीं अनार थे, मगर बास फल दुनिया के फलों जैसे नहीं थे, कुछ नए ही थे। आशी कहने लगी, मुझे तो वो अनार बहुत अच्छा लग रहा है। उसके कहने की देर थी और शाख झुकी, अनार टूटकर उसके सामने गिर पड़ा, कटा हुआ दाने निकले हुए। उसने मुंह में डाला और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कितना मजेदार है, इसमें तो बीज भी नहीं जिनके दांतों में फंसने का अंदेशा हो, और मीठा तो इतना है। दुनिया में अनार मुझे बहुत पसंद था, मैंने बहुत अनार खाए मगर ऐसे नहीं थे। मैंने कहा, और मुझे तो आम बहुत पसंद था। अभी मेरे मुंह में ही अल्फाज थे तो देखा एक खादिम बड़े से तश्त में आम लिए खड़ा था, मुख्तलिफ किस्मों के आम। मैं उठ के बैठ गई, ये तो मजा आ गया। दुनिया में पसंद होने के बावजूद ज्यादा आम नहीं खा सकती थी क्योंकि कभी वजन का मसला कभी शुगर का। मैंने शौक से जल्दी जल्दी आम खाने शुरू कर दिए। ये कैसे आम है, मुंह में जाते ही खुल जाते और मिठास तो ऐसी जैसे शहद हो। हम खाते जा रहे थे और बातें करते जा रहे थे। एक नरमो मुलायम हवा चल रही थी जिससे दरख्तों की शाखें हिलती थी और उनके हिलने से ऐसी सुरीली आवाज पैदा होती थी जो कानों में जैसे रस घोल रही हो। ये यहां का म्यूजिक था जो पाकीजा था, जो दिल में उतर जाने वाला था, जिसमें कोई खराबी नहीं थी, जो रहमान की तरफ से जन्नतियों के लिए इनाम था। मैंने नजर उठा के दूर तक देखा, मेरी निगाह इतनी तेज हो गई थी कि हजारों साल के फासले तक भी मुझे नजर आ रहा था। एक वसी और अरीज जन्नत मेरे सामने थी, हर तरफ खादिम मुसलसल काम में लगे हुए थे, कालीन बिछे हुए थे, कीमती तख्तों पर तकिए लगे हुए थे, सिर्फ इन मनाजिर कोई हजारों लाखों साल देखती रहूं तो ये ऐसे दिलकश थे कि वक्त के गुजरने का पता ही ना चले। मैंने आशी से कहा, सुनो, जहन्नुम में कितना शोर था और यहां कितना सुकून है। वो कहने लगी, हाँ वो तो वाकई बहुत बुरी जगह है, और इंसान कितना नादान है। इतनी बार करीम रब ने कुरान में उस जगह से डराया, उसके अजाबों का बताया, मगर इंसान समझता ही नहीं था, सोचता ही नहीं था, 4 दिन की जिंदगी में रब की इताअत करना कौन सा इतना मुश्किल काम था। सिर्फ 4 दिन की तो जिंदगी थी, बताओ ना। मैंने कहा, हाँ वाकई सिर्फ 4 दिन की जिंदगी थी। ऐसे ही लग रहा था कि वो 60-70 साल की जिंदगी पलक झपकने में गुजर गई। वो 60-70 साल नहीं लग रहे थे, वो चंद मिनट लग रहे थे। क्या कुछ लोगों ने चंद मिनटों में इतनी नाफरमानी कर ली? क्या वो अपने आप को काबू ना रख सके? क्या अपनी खुशी और अपनी मर्जियों को सिर्फ इतनी सी देर के लिए भी कुर्बान ना कर सके? क्या अकल नहीं आई? क्या समझ नहीं थी? आशी कहने लगी, गुड़िया दिल चाहता है, कभी कभी तो मेरा ये दिल चाहता है कि वापस लौट जाऊं और दुनिया में जाकर ऐलान करूं कि लोगों मैंने देखी है जन्नत, लोगों छोड़ दो ये नाफरमानी, प्लीज छोड़ दो गुनाह, मत अल्लाह ताला को नाराज करो, वरना ऐसा ना हो कि तुम जन्नत से महरूम रह जाओ। मत ढीठ बनो, बाज आ जाओ, मत शैतान की बात सुनना, वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हें जहन्नुम में ले जाना चाहता है। मैं आशी की बात सुन के थंजिया हंसी और कहा, आशी तू सोचती है अगर तू ये सब कह देगी तो लोग समझ जाएंगे? हाँ हाँ मैं एक एक को पकड़ पकड़ के कहूंगी, मैं कहूंगी मैंने देखी है जन्नत, तुम सिर्फ थोड़े दिन सब्र कर लो, ये दुनिया जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर एक ऐसी जिंदगी शुरू होगी जहां जन्नत मिल गई तो तुम्हारे मजे ही मजे हो जाएंगे। खुदा के लिए सिर्फ थोड़े दिन के लिए सब्र कर लो, सिर्फ थोड़े दिन की बात है, इनमें अपने रब को राजी कर लो, ये दिन बहुत जल्दी गुजर जाएंगे और वो रब बहुत जल्दी राजी हो जाता है, तुम कोशिश तो करके देखो। मैं उसकी बातें सुन रही थी और हंस रही थी, मेरी हंसी में एक अफसोस था, आशी मेरी बहन तुमने क्या ये काम करना है? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमसे पहले सच्चाई के पैकर पैगंबर हुआ करते थे? वो यही काम तो करते थे, वो लोगों को समझाते ही तो थे कि अपनी जिंदगियां इस दुनिया में ही ना खपा देना, वो यही कहने के लिए तो दुनिया में भेजे गए थे। मगर दुनिया का नशा जब इंसान पर चढ़ जाता है ना, तो उसकी नजर दूर तक देख ही नहीं पाती, फिर वो सिर्फ वहीं की सोचता है और उसी की धुन में लगा रहता है, फिर उसको वही जिंदगी सामने नजर आ रही होती है, फिर वो कहता है इतनी दूर का कौन सोचे, हालांकि पगले वो दूर थोड़ा ही थी। दुनिया का वक्त तो बड़ी तेजी से गुजर जाता है, और फिर जो ही मौत आती है, आखरत के मरहले शुरू हो जाते हैं, फिर या जन्नत है या जहन्नम। हम दोनों यही बातें किए जा रहे थे, हम बेबस थे, हम तो वापस जाकर किसी को नहीं बता सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने तो खुद अपने कलाम में इंसानों को सब कुछ बता दिया हुआ था, खोल खोल के दिखा दिया था। जब उन्होंने उसको कुछ नहीं समझा तो हमारे बताने पे किसी ने क्या सुनना था। वाकई वो खुशकिस्मती लोग थे जो दुनिया में पैगंबरों की बात मान जाते थे, जो अल्लाह के कलाम से नसीहत ले लेते थे, مگر اکثریت ایسی نہیں تھی. اکثریت اس کے کلام کو توجہ ہی نہیں دیتی تھی، اور جو کوئی پڑھ بھی لیتا تھا تو یقین نہیں کرتا تھا. دنیا تھی ایسی چیز، کاش پر ہوتے تو اڑ کے چلی جاتی، اور دنیا والوں کو یہاں کی کہانی سناتی، یہاں کی عیش بتاتی، یہاں کی نعمتوں کو ان کے سامنے رکھتی، شاید وہ مان جاتے. مگر اب تو نہ دنیا رہی نہ اس کے رہنے والے رہے، سبھی اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا چکے ہیں. ایک دم ہم مجھے دنیا کے رہنے والوں سے اپنی قرآن کی استاد کا یاد آ گیا. میں اچھل کے بیٹھ گئی. آشی، ہماری استاد کہا کرتی تھی کہ تم مجھے جنت میں نہ پاؤ تو میرے بارے میں پوچھ لینا. کہ اے اللہ، مجھے کوئی تیری یاد دلاتی تھی، وہ نظر نہیں آ رہی. آشی میری بے چینی دیکھ کے بولی، فکر نہ کرو، میں نے پوچھ لیا تھا، وہ اپنے درجے پہ پہنچ چکی ہیں، ان کا درجہ اس سے بلند ہے. میں نے کہا شکر ہے. آشی، کیوں نہ ہم اپنے قرآن کے ساتھیوں سے ملاقات کریں جن کے ساتھ ہم پڑھا کرتے تھے. میں نے سبحانک اللہم کہا تو خادم فوراً میرے سامنے حاضر ہو گئے. میں نے کہا میرے تمام قرآن کے ساتھیوں کو میرے باغ میں کل انشاءاللہ پکنک کی دعوت دیا. وہ بولا ضرور. میں نے آشی کی طرف مڑ کے کہا، اگر دنیا میں میرے گھر میں کل دعوت ہوتی تو میں آج ایک ایک سٹور پہ گھوم رہی ہوتی گروسری کی لسٹ لے کے. پھر بھی میں نے دو چار چیزیں تو بھول ہی جانی تھی، اور رات بھر کھانا پکاتے رہنا تھا، اور جس دن دعوت ہونی تھی تو تھک کے چور ہو جانا تھا. ہم دونوں یہ باتیں کر کے ہنسنے لگے. مجھے اپنے قرآن کے ساتھیوں سے بڑی محبت تھی اور ان سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا. سب مخلص دوست تھے. ہم دنیا میں مل کے قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. وہ میرے ساتھی کتنے پیارے تھے. میں دنیا کی اپنی مجلسوں کو یاد کر کے انہی میں کھو گئی کہ اچانک کسی کی آواز میرے کانوں میں پڑی. کوئی کہہ رہا تھا پکار پکار کے، اے جنتیو، اے جنتیو. آشی بھی اٹھ کے بیٹھ گئی. اے جنتیو، کیا اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے دور خلاؤں میں دیکھا، ایک مینڈا ہمیں نظر آیا. پھر آواز آئی، اے جہنمیو، اے جہنمیو، کیا اس کو پہچانتے ہو؟ ان کو بھی ہو سکتا ہے دکھایا گیا ہوگا یہی مینڈا. پھر کہنے والے نے کہا، یہ موت ہے. پھر اس نے کہا، آج اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بعد کبھی کوئی موت نہیں. اللہ اکبر، اس کا یہ سننا تھا کہ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. آشی بھی خوشی سے دیوانی ہوئی جا رہی تھی. ہم اتنے خوش تھے کہ اس سے پہلے آج تک ہم اتنے خوش نہیں ہوئے. اور وجہ یہ تھی کہ کہیں دل کے کسی کونے میں شاید یہ خدشہ چھپا ہوا تھا کہ کہیں یہ سب چھن نہ جائے، ہائے کہیں موت نہ آ جائے. چلو آج نہ سہی، ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں سال گزرنے کے بعد کہیں ہمیں سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ بس اب کافی انجوائے کر لیا تم نے، اب سب کچھ ختم ہونے لگا ہے. دل میں کہیں یہ خیال تھا، مگر آج یہ خدشہ بھی دور ہو گیا. میں تو اتنی خوش تھی کہ خوشی سے لگ رہا تھا میرا دل پھٹ جائے گا، شاید موت ہوتی تو میں مر ہی جاتی خوشی سے. میرے آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے، اور میں اپنی سہیلی کو گلے لگا کر مسلسل یہ کہہ رہی تھی، الحمدللہ الحمدللہ، اب کبھی جدائی نہیں، الحمدللہ اب ہمیں یہاں سے کبھی نہیں کوئی نکالے گا، الحمدللہ ہم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں، یہیں رہ سکتے ہیں. وہ بھی رونے لگی. ہمارا بس نہیں چل رہا تھا ہم خوشی میں کیا کر ڈالیں، شاید دنیا ہوتی تو ہم شکرانے کے نفل پڑھتے، صدقہ کرتے. मगर यहां पर तो किसी इबादत की कोई मुशक्कत ही नहीं। हम वहां इबादतों में सुस्ती किया करते थे कभी, भला कौन सा हमेशा इबादतों में लगे रहना था, कौन सा हमेशा ही नफल पढ़ने थे, कौन सा हमेशा सदके करने पड़ने थे, कौन सा हमेशा ही रोजे रखने पड़ने थे, कौन सा हमेशा रातों को जागना पड़ना था। क्यों हम लोग इतनी सुस्ती करते थे, चंद दिन के लिए ही तो करना था, फिर भी पता नहीं हम ऐसे क्यों थे। अब यहां कोई नमाज नहीं, कोई सजदा नहीं, कोई सदका नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैंने आशी से रुख्सत चाही, वो बोली अभी और ठहरती ना। मैंने कहा नहीं अब मैं जाऊं, मेरे शौहर भी इंतजार कर रहे होंगे, जब से जन्नत में आई हूं उनके पास ज्यादा देर नहीं बैठी। आशी कहने लगी हाँ मेरे वाले भी अपनी हूरों के पास गए हैं। मैंने कहा अच्छा, और तुम कैसा महसूस कर रही हो? वो बोली कुछ भी नहीं, दिल तो अल्लाह के हाथों में है, जिसके लिए चाहे दिल में गैरत और रकावट डाल दे और जब चाहे निकाल दे, मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ। मैं अपनी जन्नत में इतनी खुश हूं और मजा कर रही हूं, वो भी मजा कर रहे हैं। हाँ आशी, पता नहीं कितना अरसा तो गुजर चुका है यहां आए हुए, यहां तो वाकई एक एक मंजर जो सामने आता है वो इतना हसीन है कि हजारों साल इंसान उसी मंजर में खोया रहता है, उससे नजर हटने ही नहीं पाती। दुनिया में हम बेकार फोन और टीवी में घंटों गुजार देते थे और वक्त का पता भी नहीं चलता था, हालांकि उनमें फजूल चीजें ज्यादा होती थी, तब भी उनमें खो जाते थे। और यहां तो मनाजिर ऐसे हैं कि इनको देखकर पलक झपकना भी कोई भूल जाए, कभी एक सीन सामने आता है कभी दूसरा। एक एक चीज को देखते जाओ और जमाना बीत जाए, इतना अरसा दुनिया में किसी चीज को देखते तो जिंदगी शायद खत्म हो जाती। हाशी मेरी बातें सुन के हंसती। मैंने कहा अब चलती हूं, हमारी बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। वो मुझे रुखसत करने के लिए बाग के किनारे पर आ गई, मेरी सवारी तैयार खड़ी थी। खादिमों ने आगे बढ़ के दरवाजा खोला और मैं किसी मलका की तरह अपना लिबास संभालते हुए उसमें सवार हो गई। यहां तक हमारा आज का एपिसोड था। वापिस आ जाए दुनिया में, अभी हम वहां नहीं पहुंचे, अभी हमें यही मेहनत करनी है। मैं भी वहां पहुंच जाती हूँ और आप भी पहुंच जाते हैं, मुझे लगता है अभी हमें बहुत मेहनत करनी है ताकि हम वहां तक पहुंच सकें। अभी हमारे पास वक्त है, अभी हमारे पास सलाहियत है, अभी हम अपनी नेकियों को बढ़ा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उसको राजी कर सकें। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम जन्नतियों वाले काम कर सकें और उसके मुकर्रबीन में शामिल हो सकें।